नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स में और मैं हूं संजय दीक्षित आपके समक्ष। पीएफआई के विरुद्ध बड़ा एक्शन कल हुआ। कल जब हमने बात की थी तब 14 राज्यों में कार्रवाई हुई थी, अब पता चल रहा है कि 15 राज्यों के कुल 93 स्थानों पर कार्यवाही हुई। लेकिन सबसे अधिक जो रुचिकर बात मुझे इस पूरे प्रकरण में लग रही है वो ये लग रही है कि बड़ी जबरदस्त खामोशी है, यानी कि एक तरह से एनआईए का पूरा आतंक इन सारे देश विरोधी तत्वों पर छा गया है। मैं जितने भी हमारे पंच मक्कार हैं उन सबके ट्वीट से तलाश कर रहा था, ना आरफा ने कोई ट्वीट किया है, ना हमारी स्वरा ने कोई ट्वीट किया है, ना राणा ने कोई ट्वीट किया है, ना ओवैसी भाई साहब कुछ बोले। हमारे हजरत ओवैसी भी चुप बैठे हैं। हंगामा कौन कर रहा है? पीएफआई हंगामा कर रही है। और राहुल गांधी ने आज का दिन रेस्ट डे डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि पीएफआई ने आज हड़ताल बुलाई थी, तो राहुल गांधी इस समय केरल में है, तो जब पीएफआई हड़ताल करा रही है तो राहुल गांधी कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने कुछ विशेष नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं हर प्रकार के कम्युनलिज्म और वायलेंस की निंदा करता हूं। अब वायलेंस तो इस समय पीएफआई कर रही है केरल में। आपको पता है केरल में आज क्या हुआ? केरल में सवेरे से उन्होंने एक बंद बुलाया हुआ है, आकस्मिक बंद बुलाया हुआ है पीएफआई ने, क्योंकि केरल में ही वह सबसे अधिक सशक्त है और केरल में ही उनकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल गांव-गांव में फैली हुई हैं। उसके अतिरिक्त वहां पर उन्होंने बहुत सारे टारगेट्स ले रखे हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो उनके अबू बकर साहब हों, पुराने अध्यक्ष या नए अध्यक्ष जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं सलाम साहब हों, ये एक जितने भी बड़े बड़े उनके नेता वो ये वहीं से गिरफ्तार हुए, अलावा उनके सेक्रेटरी जनरल के जो कि बेंगलोर में थे, और परवेज अहमद जो दिल्ली में थे, बाकी और बहुत सारे गिरफ्तार हुए। आज केरल में दो, आज असम में दो और गिरफ्तार हुए। इसके दो दिन पहले यानी कल जो एक्शन हुआ है, यानी गुरुवार को, उसके पहले मंगलवार को जबरदस्त एक्शन आंध्र और तेलंगाना में हो चुका है, जहां 38 स्थानों पर छापे पड़े थे और 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। उनको पेश करके जो रिमांड ली गई है उसका लोगों ने आज पूरा का पूरा जो तर्जुमा है वो भी निकाल लिया, और उसमें इन्होंने साफ कहा है कि पीएफआई भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना चाहती है। जी हाँ, ये जो रिमांड एप्लीकेशन है उसका एक्सट्रैक्ट है, और ये रिमांड एप्लीकेशन जो बुधवार को लगी थी हैदराबाद में, उसका ये एक्सट्रैक्ट है। उसमें ये लिखा हुआ है कि रिमांड लेने का कारण ये है, यूएपीए उन पे सब पे लगाया गया है, मुझे लगता है यूएपीए यहाँ भी लगाया जाएगा। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि केरल हाई कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया। केरल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा कि हमारे यहाँ से, केरल हाई कोर्ट से पहले से यह निर्देश है कि कोई भी फ्लैश स्ट्राइक नहीं हो सकती, तो कैसे पीएफआई ने ये फ्लैश स्ट्राइक करके और रास्ते बाधित किए, लोगों के आवागमन में विघ्न डाला और हिंसा की, और इसके लिए उन्होंने निर्देश पहले ही आज ही सवेरे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, किसी ने इस पे अप्लाई नहीं किया, उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके नोटिस जारी कर दिया स्टेट को। और ये तो कहना पड़ेगा कि सीपीएम की जो सरकार इस समय है वहां पे, वो इनसे कोई विशेष रियायत नहीं दिखाई दे रही, वो इनसे कोई रियायत नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनको इनसे कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं है। पीएफआई से केरल की जो एक समरसता है, जो सदैव से वहां रही है, आप यदि केरल जाएं तो आपको सामान्य रूप से किसी प्रकार की कटुता आपस में नहीं दिखाई पड़ती, जैसा कि यदि आप बंगाल जाएंगे तो साफ आपको दिखाई पड़ेगी, असम जाएंगे तो कई स्थानों पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, आपको केरल में नहीं दिखाई पड़ती। तो सीपीएम ने पूरा सहयोग किया ये बोलना पड़ेगा आपको, राहुल गांधी ने पीएफआई के साथ पूरा सहयोग किया, आज उन्होंने रेस्ट डे मनाया है और रेस्ट डे मनाते हुए पूरा सहयोग दिया है। वो वायनाड में उनकी यात्रा पहुंचने वाली है। आज पीएफआई ने जबरदस्त हिंसा कही है कुछ स्थानों पर, खासतौर से कोझिकोड जिसको कैलिकट कहते थे पहले वहां पर, और उसके अतिरिक्त कोट्टायम में। वैसे तो जो सेंट्रल केरल है वो उनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है, उनका जो स्ट्रांग होल्ड है वो नॉर्थ केरल है, लेकिन उन्होंने अपना बाहुबल दिखाने का प्रयास किया है सेंट्रल केरला में, जहां पर क्रिश्चियंस की संख्या अधिक है। तो आतंक दिखाने का प्रयास पीएफआई द्वारा हो रहा है। उनके समर्थन में कौन बोला है अभी तक? एक तो हमारे शफीकुर रहमान बर्ख साहब बोले हैं। आप बर्ख साहब को आप जानते हैं अच्छी तरह से, वो वही हैं जब वंदे मातरम होता है तो उठ के चले जाते हैं और कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और ये भारत देश है जहां वंदे मातरम नहीं बोलने पर भी उनकी लोकसभा की सदस्यता निरंतर है, बरकरार है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो अति उदारता की जो नीति है वह कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए यह शफीकुर रहमान बर्क जैसे पूरी तरह से विभाजनकारी, विभाजन के पक्षधर, जिनके दिल में पाकिस्तान बैठा हुआ है, जिनके पाकिस्तान में जिनके दिमाग में पाकिस्तान बोलता है, वे भी आज लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं और सदस्य बन के सीधे पीएफआई जैसे संगठनों की हिमायत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। एक और भाई साहब जो बोले हैं वो जमातुल इस्लामी हिंद के जो है वो सादतुल्ला साहब जो है, उन्होंने कुछ आवाज उठाई है। और तीसरे जो हैं वो आप जानते हैं कौन? वही जफरुल इस्लाम खान, जफरुल खान अंडरस्कोर जफरुल, जिनका ट्विटर हैंडल है, जाके देखिए वो क्या कह रहे हैं। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग कहना है। वैसे ये भी बता दूं कि ये जफरुल इस्लाम साहब जो आरएसएस के अत्यंत प्रिय वहीदुद्दीन खान साहब थे, उनके साहबजादे हैं, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के जब ये चेयरमैन थे तब उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि हमें यदि परेशान करेंगे या यदि हमें आप लोग हैरान करेंगे तो अरब से हम सहायता ले लेंगे और अरब वाले आके जो है वो आपको जब घुड़की देंगे तो आपको मानना पड़ेगा। ये वो है, इनके निवास स्थान पर 2 वर्ष पूर्व एनआईए की रेड पड़ी थी, एनआईए का छापा पड़ा था। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, ये इस तरह की बातें। कुछ और लोग भी डपे चुके कहते हैं, जैसे कि मदरसों के संदर्भ में हजरत ओवैसी बोलते हैं, उसी तरह से जफरुल इस्लाम कह रहे हैं कि भाई आप जो है छापे केवल माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन पे क्यों डालते हैं, आप आरएसएस और बजरंग दल पे क्यों नहीं डालते? भाई आरएसएस और बजरंग दल के विरुद्ध कोई एफआईआर हो तो आरएसएस और बजरंग दल पे भी पड़ेंगे। आरएसएस और बजरंग दल यदि कहें कि 2047 में वो कोई अलग देश बनाने वाले हैं या बाहर से किसी को आयातित करके और उनको इस सरकार के ऊपर बैठालना चाहते हैं या इस प्रजातंत्र को नष्ट करके किसी दूसरे प्रकार का तंत्र यहाँ पर स्थापित करना चाहते हो, इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट यदि आपके लोगों के पास या जफरुल इस्लाम साहब के पास हो तो वो बताएं। यदि इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आता है हमारे सामने तो हम बजरंग दल को भी, उसकी भी निंदा करेंगे, उसकी भी भर्त्सना करेंगे, लेकिन केवल इसलिए कि नहीं साहब आपने पीएफआई को रेड किया है तो साथ में आपको दिखाने के लिए 4 और जो हैं हिंदू संगठन उनको भी करना आवश्यक है। ये इक्विवेलेंस बोलते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर में कई बार लोग किया करते थे। लॉ एंड ऑर्डर में ये अक्सर होता है कि अगर दंगा हुआ, पूरी तरह से हमला मुस्लिम पक्ष ने किया और थोड़ा बहुत हिंदू पक्ष ने अपनी सेल्फ डिफेंस में प्रतिरोध किया, तो ये होगा कि भाई दोनों तरफ से बराबर बराबर उठा लो। दोनों तरफ से बराबर बराबर उठाओगे तो तुम निष्पक्ष दिखोगे, और निष्पक्ष दिखना विशेषकर कांग्रेस राज्य में अत्यंत आवश्यक था। कहीं ये ना हो कि कहीं किसी प्रकार का यह आरोप न लग जाए कि आप जो हैं वो अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना कर रहे हैं, भले ही अल्पसंख्यक जो हैं वो चाकू छुरा लेके सड़कों पे घूम रहे हों और लोगों के अत्याय कर रहे हों। तो इस प्रकार का जब माहौल हुआ करता था, इस प्रकार का जब वातावरण हुआ करता था, ऐसे वातावरण मैंने स्वयं काम किया फील्ड में, तो ये बात हुआ करती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं है भाई। एनआईए ने जब पूरी एक्शनेबल इंटेलिजेंस कर ली, आप जानते हैं कि हम लगातार कितने समय से मांग कर रहे हैं, हमें पीएफआई के ऊपर बैन करने की मांग करते हुए कम से कम एक वर्ष से ऊपर तो हो ही गया है, और ये हम ये जानते बूझते ये मांग कर रहे थे कि एफपीआई पीएफआई के विरुद्ध पर्याप्त सबूत एनआईए के पास पहले से ही थे। 2017 में एनआईए ने खुद दिए थे, स्वयं दिए थे, और उसके अतिरिक्त केरल पुलिस लगातार देती रही है, अब तो कर्नाटक पुलिस ने भी बहुत सारा इनको दे दिया, झारखंड पुलिस के पास काफ़ी कुछ प्रमाण थे तो उन्होंने, उनके पास यूएपीए में शक्तियां नहीं थी तो उन्होंने एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है उसकी एक धारा 105 के अंतर्गत उसमें बैन कर दिया था, लेकिन चूंकि उसमें जो पावर थी उनकी वो बहुत हल्की थी तो वो टिका नहीं। यूएपीए में बैन पीएफआई को मुझे लगता है पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आया दुरुस्त आया, अब आपने इतने स्थानों पर रेड कर दिए है तो निश्चित रूप से बैन लगता है कि हो ही जाएगा देर सवेर, इतना सारा आपके पास प्रमाण आ जाने के बाद जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण है, उसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्री प्रमाण है, यानी कि हमारा जो भारतीय एविडेंस एक्ट है उसमें क्लास वन क्लास टू हर तरह के प्रमाण आपके पास है, तो इसके बाद भी मुझे लगता है कि विलंब की कोई आवश्यकता अब नहीं है। अब मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जो पंचमकार तत्व बाकी हैं वे क्या कह रहे हैं। पंचमकारों में आप जानते हैं हमारे मुल्ला मिशनरी मार्क्सिस्ट, मुल्ला में मैंने आपको बता दिया, दो तीन के अलावा कोई नहीं बोला, सब चुप बैठे हैं, बल्कि वो जो किराए का इमाम है वो तो हमारे मोहन भागवत जी को सर्टिफिकेट दे रहा है कि वे राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि है। खैर इस पर हम कभी और बात करेंगे कि राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कैसे बनते हैं, क्योंकि राष्ट्र ऋषि के लिए कम से कम इतना तो आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो, कुछ पढ़े लिखे हों, यानी कि शास्त्रों में पढ़े लिखे हों, कुछ किताबें विताबें कभी लिखी हों, कोई स्कॉलरशिप हो, तब तो आप ऋषि की पदवी दोगे ना। हमने तो आज तक कभी श्री मोहन भागवत जी का कोई आर्टिकल पढ़ा नहीं आज तक। खैर वो विषयांतर हो गया, हम इस पर आते हैं कि जो है वो इमाम इत्यादि जो है वो तो प्रमाण पत्र देते घूम रहे हैं, ये वही इमाम है। अभी एस इरफान हबीब का मैं ट्वीट दे रहा था, वो कह रहा था कि ये वही इमाम है जो इस तरह के नाटक करता रहता है, कि नाटक इसलिए करता रहता है क्योंकि इसको अपनी जो मस्जिद है कनॉट प्लेस में बीच रास्ते में बनी हुई उसको बचाना रहता है, क्योंकि वो कभी भी कोई भी सरकार यदि चाहे तो उसको एक सड़क में अतिक्रमण बताकर उसका अधिग्रहण करके और उसको नष्ट कर सकती है। इनके पिताजी की थोड़ी बहुत स्टैंडिंग थी, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है मियाँ उमेर इलियासी साहब की, तो ये तो उसमें लगे हुए हैं। देवबंद चुप है, बरेली रजा अकेडमी चुप है, पीएफआई तो खैर अपने आप कुछ कर ही रही है। पीएफआई के लोग विरुद्ध भी हैं इसलिए क्योंकि एक बात और बताऊं आपको जो अधिक लोगों को नहीं पता है कि पीएफआई में अहले हदीस वालों का वर्चस्व है, और ये हमारे सुन्नी बरेलवी और ये सुन्नी देवबंदी ये दोनों इनको पसंद नहीं करते हैं अहले हदीस वालों को, क्योंकि ये अहले मदीस वाले जो हैं ये गैर मुकल्लिद हैं। अब ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, लेकिन ये जो गैर मुकल्लिदीन लोग जो हैं इनको बरेलवी और देवबंदी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं इस समय। जमात इस्लामी हिंद ने जरूर कुछ थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन वो भी कुछ हल्का फुल्का ही बोला है मुझे लगता है, सिर्फ इसलिए कि अपनी वो दिखाना चाहते होंगे कि साहब के हम उम्मत के साथ में। लेकिन जाकिर नायक भी अहले हदीस था, आपको पता होना चाहिए, ये पीएफआई वाले भी जो हैं वो जाकिर नायक के अधिक निकट हैं, उनके बिल्कुल करीब हैं, बाकियों के अनकरीब हैं जैसा उर्दू में बोलते हैं। तो इसलिए अब आप समझिए जो आप सोच रहे हैं कि ये चुप क्यों है, ये चुप होने का कारण यह भी हो सकता है। ओवैसी चुप क्यों है? ओवैसी चुप इसलिए है क्योंकि वो पीएफआई को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, यदि पीएफआई बैन हो जाए तो कई सारे पीएफआई वाले ओवैसी की पार्टी में आ जाएंगे, और ओवैसी ने चूंकि अपनी स्वीकार्यता बना रखी है और कानूनी दांव पेच खेल कर अपने आप को क्लियर बना रखा है तो ओवैसी भी इसमें प्रसन्न होगा। तो इसलिए पीएफआई का तो मुझे लगता है कि अब खेल जल्दी ही खत्म होने वाला है, और पीएफआई का खेल खत्म हो उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि जो इनका जो पूरा नेटवर्क है, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में जो बना हुआ है, वो नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त होना चाहिए। आज देखिए, उन्होंने कन्नूर में आरएसएस के कार्यालय पर हमला कर दिया। अब कन्नूर जो है वो केरल के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और वहाँ पर भी इनकी हिम्मत यह है कि ये वहाँ पर पूरी तरह से हिंसा का सहारा लेके और हमला कर रहे हैं पीएफआई वाले। जो इनका उद्देश्य था वो पकड़ा गया था फुलवारी शरीफ में, पटना में, आपको पता है। वो हालांकि वो घोषित उद्देश्य था 2016 में ही, जो बड़ा डॉक्यूमेंट आया था, मैंने कल ही आपको बताया था कि वो हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको रेफर कर सकते हैं। इसके उपरांत भी लोगों में लगता है कि ये समझ नहीं आई कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने जिस तरह से आज संज्ञान लिया है, उससे अब ये लग रहा है कि पूरा का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी इनके विरुद्ध होता जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आप सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। अमित शाह जी को जो फ्री हैंड मिला है, उसका उन्होंने प्रमाण दे दिया कि यदि उनको फ्री हैंड मिले तो वो क्या कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो फ्री हैंड मिला है, इसका कुछ प्रमाण जो है वो कश्मीर में भी दिखाएंगे, क्योंकि कश्मीर वैसे तो अभी तक पूरी तरह से दुल्लत दोवाल जो द्वय हैं उनके नियंत्रण में रहा है पूरी वहाँ की पॉलिसी मेकिंग। वहाँ की पॉलिसी मेकिंग भी फ्री होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को सबको बधाई देते हुए, अमित शाह जी को बधाई देते हुए, और यह आशा करते हुए कि ये जो कार्यक्रम आरंभ हुआ है, इसमें जो फ्री हैंड दिया गया है अमित शाह जी को, इसको पीछे नहीं खींचा जाएगा। CAA जो है रुका हुआ है इतने दिनों से, उसको लागू किया जाएगा। CAA के अतिरिक्त और बहुत सारी जो हमारी मांगे हैं वे भी सुनी जाएंगी। हिंदुओं को एक बराबरी का दर्जा यहाँ मिलेगा, और ये जो पुराने शासक हैं, मुगल हों, इस्लामी हों या क्रिश्चियन हों, इनको जो एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो विशेषाधिकार को समाप्त करके कम से कम हिंदुओं के इनकी बराबरी पर तो ले जाया जाए। हर देश में जो माइनॉरिटी है वो कहती है कि हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। हमारे देश में ये है विसंगति देख लीजिए, ये है विचित्र बात देख लीजिए कि मेजॉरिटी है वो ये कह रही है कि साहब हमें माइनॉरिटी के बराबर तो राइट दे दीजिए। इसी आशा से अब हम ले लेते हैं प्रश्न, और आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि दी जयपुर डायलॉग्स के रजिस्ट्रेशन ओपन हैं 5 और 6 नवंबर 2022 तक इसका है। 50% रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अब आपके पास केवल 50% सीट ही बाकी बची है, इसलिए शीघ्रता करें, और हमें आपकी सपोर्ट भी चाहिए इस आयोजन के लिए भी और नॉर्मल वे में भी। तो वो सपोर्ट आपकी जो फाइनेंशियल है वो भी हमें मिलती रहे, ये हम आपसे आशा करते हैं, प्रत्याशा करते हैं। प्रश्न।